मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरें हमारे धाम। समय सार परमागम की 168वीं गाथा, जिसकी उत्थानिका में लिखा गया है कि 167वीं गाथा में यह कहा है कि मोह राग द्वेष भाव ही आश्रव हैं, और 166वीं गाथा में यह कहा है कि ज्ञानी के इन आश्रव भावों का अभाव है। अब 168वीं गाथा में यह बता रहे हैं कि ज्ञानी के रागादि भावों से अमिश्रित भाव ही उत्पन्न होता है और इसी कारण उसे बंध नहीं होता। ज्ञानी के रागादि से अमिश्रित भाव ही उत्पन्न होता है, संस्कृत में भी है, अथ रागादि असंकीर्ण भाव संभवम दर्शयति। ज्ञानी के रागादि से असंकीर्ण भाव ही पैदा होता है। अब ज्ञानी माने यहां सम्यक दृष्टि, एक अर्थ तो यह है, दूसरा अर्थ केवल ज्ञान भी लगा सकते हैं, लेकिन यहां मुख नहीं है। तो कहते हैं कि केवल ज्ञान के तो रागादि होते ही नहीं, इसलिए वहां तो कुछ समझाने की विशेष बात नहीं है। अब यहां ये कह रहे हैं कि ज्ञानी के रागादि से असंकीर्ण मान बिना मिला हुआ ही भाग होता है। अब उस वक्त अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन, ये सारे राग द्वेष ये सब मौजूद रहते हैं, और द्रव्य कर्मों की अपेक्षा देखें तो उपसम सम्यक दृष्टि और छह उपसम सम्यक दृष्टियों के सत्ता में मिथ्यात्व तो पड़ा हुआ भी रह सकता है। ऐसी परिस्थिति में वो यहां कह रहे हैं कि ज्ञानी के रागादि भाव से असंकीर्ण भाव ही पैदा होता है, माने वो ज्ञान भाव है, उसमें रागादि मिश्रित नहीं है। और इसका एक ही कारण या उपाय है कि जो वो अनंतानुअंत बंदी आदि राग हैं और सत्ता में पड़ा हुआ जो कर्म है, उन सबको यहां आश्रव भाव रागादि भाव माना ही नहीं। और अनंतानुबंधी कषाय और मिथ्यात्व भाव, इसको ही यहां रागादि भाव कहते हैं। इसके बिना कोई अपेक्षा यहां घटित नहीं हो सकती। पूरा निष्कर्ष मैंने आपको दो पंक्तियों में बता दिया इस गाथा का, और बाकी अब जो कुछ अपन पढ़ेंगे वो सब इसी बात की पुष्टि में कहा जाएगा। गाथा पढ़ो। पक्के फलम निपड़िए जहन फलम बद्धये पुणो बिंते न भावे। पक्क फल जिस तरह गिर कर उदाहरण लिया है कि पेड़ पर कोई फल पक जाए और वो अपने आप गिरे, तो फिर वो फल को गिर गया है तो जहां से गिरा है वहीं हम जोड़ दें, ये संभव नहीं है। मतलब वो गया तो गया, ऐसे ही कर्म उदय में आता है और उसका जो फल में रागादि भाव हुए, यहां पर वो मिथ्यात्व कर्म और अनंतानुबंधी कर्म की बात है, और भी रागादि लेना हो तो ले लेना, लेकिन वो संयोग वाले कर्म की बात नहीं है। उस पर भी घटित करो तो कर लेना, लेकिन यहां उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो कहते हैं एक बार कर्म के उदय में जो क्रोध आदि हो गए और वो कर्म का उदय खिर गया, खत्म हो गया बस, तो वो क्रोध फिर खड़ा नहीं रह सकता अगले समय में। जब अगले समय में द्वारा कोई कर्म का उदय होगा तो ही वो खड़ा रह सकता है। अब वो कर्म, वो जो राग भाव द्वारा वैसा राग भाव हो ही नहीं सकता, माने वो उसकी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब द्रव्य कर्म की बात भी ले लो, तो द्रव्य कर्म उदय में आकर जो फिर गए तो वे कर्म फिर द्वारा तुम्हें वहीं के वहीं चेट जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप कहें इस बात को कहने का क्या कहना चाहते हैं? जब मैं कभी 4-5 साल का 6 साल का रहा होऊंगा तो गांव में बच्चों के हाथ पैरों में बहुत मैल लग जाता था, तो उनको गीला करके और कैसे पत्थर से होता था, कोई ऐसी चीज होती थी उससे रगड़ रगड़ कर उस मैल को छुटाते थे। अभी तुम्हारे यहां होता होगा कहीं क्या? अब आजकल तो सावन वावन हो गई, ये हो गई, पहले पत्थर से पैरों के खासकर जो जम जाता था उसको छुटाते थे। क्यों था भाई, तुम्हारा भी छुटाया तो होगा ना? तो वो उन हाथों का पैरों का धूप में बैठा करके सर्दियों के दिनों में वो घिसते रहते थे। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि ये छूट गया है तो इसे तुम जल्दी पानी डाल के धो दो, क्यों कि अभी ये सूखेगा तो फिर वही गड़बड़ी तैर जाएगा क्या? तो वो बोली कि नहीं, अब जी एक दफे उखड़ गया ना, अब ये मैल कभी नहीं चेटेगा, तुम इस पर पानी नहीं भी डालो, ऐसे ही लगे रहने दो तो अपने आप झड़ जाएगा। क्यों? अब तो लगेगा तो दूसरा मैल लगेगा, एक दफे वो उखड़ जाए फिर बस उसकी कोई कीमत नहीं है। तो उसे हटाओ नहीं हटाओ, अपने आप हट जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे वो मैल एक दफे छूट जाने के बाद द्वारा नहीं चेट सकता, ऐसे ही कर्म का मैल भी एक दफे उदय में आने के बाद में वहीं का वहीं द्वारा वो नहीं चेट सकता, वो तो कर्मण वर्ण रूप बन जाता है ना, और भाव भी खत्म हो जाता है। इसलिए आपको वही पुराना जो कर्म उदय में आया है वो हमको कुछ ज्यादा नुकसान कर देगा, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये कहना चाहते हैं वो। चाहे वो संयोग रूप आवे, संयोगों का तो पहले ही बता दिया, क्यों भविष्य के बंध का कारण बनता ही नहीं, और बाकी जो 3 कर्मों के उदय में जो विकार भी होता है भावों में वो भी बंध का कारण नहीं बनता। मोहिनी कर्म के उदय में होने वाला जो विकार है वो ही बंध का कारण बनता है। तो मिथ्या तो अनंतानबंदी रहा नहीं है, और बाकी जो रहा है वो पिछली गाथाओं में कह आए हैं कि वो चारित्र मोह संबंधी है, और उसके उदय से जो जो कर्म की प्रकृतियां बनती हैं वे बनेंगी, ये मैं समझना कि वे नहीं बनेंगी, लेकिन उनको यहां हम बंध कहते ही नहीं क्योंकि उनकी कोई कीमत ही नहीं है। वे बंधी और नहीं बंधी एक सी ही है, क्योंकि वो अनंत संसार का कारण नहीं बनती। अब टीका पढ़ते हैं अपन, देखो। जिस प्रकार पका हुआ फल एक बार डंठल से गिर जाने पर फिर उसके साथ संबंध को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार कर्मोदय से उत्पन्न होने वाला भाव जीव भाव से एक बार अलग हो जाने पर फिर जीव भाव को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार रागादि से न मिला हुआ ज्ञानमय भाव उत्पन्न होता है, माने जो वो उसको ज्ञानमय भाव वहां उत्पन्न हुआ तो उसमें रागादि मिश्रित नहीं है, सम्यक दृष्टियों के और अमिथ्या दृष्टियों के हैं, माने अनंतानबंदी संबंधी राग और मिथ्यात्व ये ही वो ज्ञान के साथ मिश्रित होते हैं। यदि ये नहीं होए तो वो ज्ञान के साथ मिश्रित नहीं होते। जीव के कर्म भाव से झड़ जाने पर फिर वह उदय को प्राप्त नहीं होता। गाथा के इस कथन को आत्मख्यातिकार ने का यह अर्थ किया है कि कर्मोदय से उत्पन्न होने वाला जीव भाव से एक बार अलग हो जाने पर फिर जीव भाव को प्राप्त नहीं होता, इसलिए रागादि से न मिला हुआ ज्ञानमय भाव उत्पन्न होता है। ये क्या कह रहे हैं कि देखो, हमें अभी गुस्सा आया ना, तो उस गुस्से को तुम एक घंटे तक कायम रख लो, तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। तो एक जगह वो ठंडा पड़ जाए और फिर तुम दोबारा वैसा ही गुस्सा कर लो, ये संभव नहीं है। पर वो तो गया, बस गया, वो खत्म हो गया, अनंत काल तक के लिए खत्म हो गया। जयचंद जी छाबड़ा ने इसमें जरा निकालो, ये पेज नंबर 26 बहुत काफी अच्छा स्पष्ट किया है, क्योंकि स्पष्ट तो है ही वैसे, पहले भी मैंने बता दिया दो पंक्तियों का अर्थ करते वक्त, इसलिए अमृतचंद ने भी ज्यादा कुछ लिखा नहीं, गाथा में भी साफ है, फिर भी जयचंद जी छाबड़ा इसको जरा स्पष्ट करते हैं। यदि ज्ञान एक बार अब अप्रतिपाती भाव से, एक कोष्टक लगाया है सोनगढ़ वालों ने, कहने का मतलब ये है कि वो जो अपने बार उदय बार बार में उदय आ जाता है ना, उसको नहीं पकड़ना। अप्रतिपाती भाव माने द्वारा फिर वो ना उत्पन्न हो, ऐसा अप्रतिपाती भाव। तो एक तो छायक संबंध असल में ऐसा होता है, केवल ज्ञानी पे घटित करो तो वहां तो खत्म ही हो गया मिथ्या तो सब। और एक अब मान लो क्षयोग समाधिक भी हैं, तो एक व्याकरण पर रचित एक बार अप्रतिपाती भाव से रागादि से भिन्न परिणमित हो तो वह पुनः कभी भी रागादि भाव के साथ मिश्रित नहीं होता। माने एक तरह संबंध दर्शन हो गया, और जब तक संबंध दर्शन कायम है उसी का नाम समझ लो अप्रतिपाती भाव है। जब तक संबंध दर्शन नहीं छूटेगा तब तक वो राग और ज्ञान आपस में मिश्रित नहीं होंगे। इस प्रकार उत्पन्न हुआ और रागादि के साथ न मिला हुआ ज्ञानमय भाव सदा रहता है। ज्ञानमय भाव उत्पन्न होता है और रागादि से मिला हुआ नहीं। वहां रागादि हैं अप्रत्यक्ष अनावरण के, तुम देख करके तुम भ्रम पैदा मत हो जाना करना। फिर जीव अस्थिरता रूप से रागादि से युक्त होता है। देखो ये बात वहां नहीं लिखी, वहां उतना ही कह के छोड़ दिया ना, तो हमें बहुत अटपटा लगता है, इतना राग तो है ढेर सारा। जैसे कल बताया था उदाहरण में कि चक्रवर्ती के 96,000 पत्नियों का राज है, छखंड की विभूति का राज है, और वो इतना जोरदार है कि भाई पे भी चक्र चला दें, और आप कहते राग नहीं है, राग नहीं है। इसलिए उनने खोला। फिर जीव अस्थिरता रूप से रागादि से युक्त होता है, वह निश्चय दृष्टि से युक्तता है ही नहीं। अब निश्चय न कहते उससे हम निश्चय नहीं से उसे हम युक्त मानते ही नहीं, और उसके उससे जो अल्पबंध होता है वह भी निश्चय की दृष्टि में बंध है ही नहीं, क्योंकि अवध स्पष्ट रूप से परिणमन निरंतर बढ़ता ही रहता है, तथा उसे मिथ्यात्व के साथ रहने वाली प्रकृतियों का बंध नहीं होता, और अन्य प्रकृतियां सामान्य संसार का कारण नहीं है। मूल से कटे हुए वृक्ष के हरे पत्तों के समान वे प्रकृतियां शीघ्र ही सूखने योग्य हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने इस बात को खोल दिया कि वो ढेर सारा जो तुम्हें राग दिखाई देगा उसकी यहां अपेक्षा नहीं है। शायद मैंने शिविर में अभी एक बात बताई थी ना कि ऐसा कथन अकेला अध्यात्म में ही नहीं है, करुणान योग में भी है। जो गोमर सार की गाथाएं सुनाई थी याद है, मिच्छे खलुओ दैयो विदिये पुन पारणामियो भावो मिश्रे छयो विषमियो अवेल विषमय नितिन्नेवे। के मिथ्यात्व गुणस्थान में और एक भाव होता है, और सासाधन गुणस्थान में पारणामय भाव होता है, और मिश्र गुणस्थान में मिश्र भाव होता है, मिस्टेक हलू है ना, क्षयोभ समीप क्षयोभ संभाव होता है, और अवरध समय तन्ने व, और अवरध समय दृष्टि के तीनों भाव होते हैं, उदय भाव भी होता है। अब ये उन्होंने कहा तीनों, अब लिखा आगे तत्तो उग्रम। अब इसके ऊपर जो हम बात करेंगे वो चारित्र मोह की अपेक्षा करेंगे। अभी तक ए दे सब्बे भावा दंशन मोहम पटुच्च भणी दाहू, ये सारे भाव दर्शन मोह की अपेक्षा कहे गए। इसके ऊपर की जो चर्चा होगी वो चारित्र मोह की होगी, तो वहां भी यही बात हो गई ना। अब यहां लगा लो यही बात कि ये जो बात हम कर रहे हैं वो दर्शन मोह की अपेक्षा कर रहे हैं। अगर ऊपर के गुणस्थानों की बात करेंगे और वहां के रागादि की बात करेंगे, वो चारित्र मोह के उदय में होने वाले रागादि की बात करेंगे। सर इतनी सी बात है वो हमारे ख्याल में आ जाए तो ये प्रकरण बिल्कुल क्लियर है, और ये नहीं आए तो लड़ते रहो झगड़ते रहो, ये सारा तो राग है ये राग नहीं, ये सारा राग तो है ये राग नहीं, बस कहते रहो। तो तुम उस अपेक्षा को स्वीकार नहीं करो है? तो कहते रहो कहते रहो कहते रहो। देखो अपने यहां इस शादी विवाह में एक पद्धति नक्की है ना कि भाई अपना खुद का गोत्र और मामा का गोत्र बताना। खंडिर वालों में ऐसा है ना, हमारे परिवारों में मामा का मूर बचाया जाता है। आपके तो मूर होता ही नहीं, गोत्र ही गोत्र होते हैं है ना, तो दो गोत्र बचाना। अभी कितने भी दूर का कोई आदमी हो लेकिन यदि वो छाबड़ा है तो शादी नहीं हो सकेगी उनके यहां, क्यों? और वो छावड़ा का सग्गा भाई है, क्यों? और उसकी लड़की की उससे संबंध हो जाता है, वो तो एकदम ही बदो उस भाई की लड़की की तो शादी हम अपने यहां हुई है, होती कि नहीं होती? इसे कई अपने केस देखेंगे, युगल जी साहब के यहां है, झांझरी की लड़की भी है और झांझरी के लड़के लड़का भी है कि नहीं है? क्यों है? क्यों वो कैसे हो गया वहां? वो कहते भैया गोत्र नहीं मिले दोनों, बस न इसमें मिले न उसमें मिले। यही बात है ना, गोत्र नहीं मिले तो हो गई, समझ में आया ना? तो वो एक नियम है। अब आप कहेंगे ये तो अन्याय है कि ये तो रहता है यहां का कहां जयपुर का, वो जबलपुर का, इतनी दूर का है, उससे तो संबंध होगा नहीं, वो तो भाई बंद हो गया छावड़ा होने से, क्यों? और बिल्कुल ही नजदीक का रिश्ता है, एक भाई की लड़की दी है, क्यों? और वहीं दूसरे भाई की लड़की को ले लेता है, क्यों? क्यों उसके गोत्र बच गए। जिसको लड़की दी है ना तो छावड़ा एक गोत्र तो बचा रही है, और मामा का गोत्र इसलिए बच गया क्योंकि उसकी शादी दूसरी जगह हुई ना, उसका मामा दूसरा है। तो एक ऐसा नियम चलता है, तुम्हारे यहां ये नजदीक दूरी ऐसे देखने से नहीं चलेगी, नियम से चलेगी। ऐसे यहां नियम है कि यहां तक चौथे गुणस्थान तक दर्शन मोह की अपेक्षा बात करना, और चौथे गुणस्थान से ऊपर जो गुणस्थानों की बात है वो सब चारित्र मोह की अपेक्षा है, क्योंकि गोमठ सार में जो गुणस्थान की परिभाषा क्या दी है, मोह जोग भवा, जो मोह और योग के निमित्त से हो उसे गुणस्थान कहते हैं, यानी गुणस्थान मोह और योग से निमित्त से होते हैं। तो 12 गुणस्थान मोह के निमित्त से होते हैं और 2 गुणस्थान योग के निमित्त से होते हैं, तो 12 में 4 गुणस्थान दर्शन मोह के निमित्त से होते हैं, बाकी के 8 गुणस्थान चारित्र मोह के निमित्त से होते हैं। तो सीधा सत्य बंटवारा है, तो इस नियम से काम चलाओ तो सब हो जाएगा, क्योंकि जैतन जी छावड़ा ये नियम जानते थे, उन्हें पक्का भरोसा था कि सामने वाला कोई नहीं जानता होगा, इसलिए उन्हें शक होगा, इसलिए उन्होंने उस नियम के अनुसार ये बात यहां पर लिख दी, बता दी। यदि एक बार रागादि से भिन्न परिणमित हो तो पुनः कभी भी रागादि भाव से मिश्रित नहीं होता, इस प्रकार उत्पन्न हुआ रागादि के साथ न मिला हुआ ज्ञान भाव मय भाव सदा रहता है। भावार्थ के उक्त कथन से यह बात स्पष्ट है यह बात अप्रतिपाती भाव की बात है, माने सहायक सम्यक्त की बात है। इसके लिए मैंने जब पंडित जयचंद जी छावड़ा की धुनादी भाषा में लिखी हुई टीका मूलता देखी तो उसमें इस संदर्भ में अत्यंत स्पष्टों में इस प्रकार उल्लेख है। क्या हुआ, इस शंका क्या हुई कि क्षयोपशम के बारे में क्या कहें, क्योंकि वहां तो अप्रतिपाती भाव नहीं है और उपशम सम्मत दर्शन तो गारंटी से छूट जाता है अंतर्मूर्त में है? तो वो मैंने कहा मूल में देखो, क्योंकि अनुवाद होते 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 कई जगह बहुत परिवर्तन हो जाता है और हमारे धन कुमार जी इस बात को बहुत गहराई से जानते हैं। तो वहां लिखा था ऐसे जब जीव का मिथ्यात्व कर्म अनंतानवंजी सहित सत्य में सू क्षय हो जाए तब फिर उदय आवे नहीं, तब ज्ञानी भया संता फिर कर्म का करता नहीं। अब ये देखो उसमें नहीं है, ऊपर वाले में क्या क्या नहीं है, अनंतान मिथ्यात्व कर्म अनंतानुबंधी सहित सत्य में सू क्षय हो जाए, ये मैं खासकर विद्यार्थियों को बता रहा हूं कि स्टडी ऐसे करना चाहिए। सगे बाप पर भी विश्वास नहीं करना, ये शर्त इसे बोलते रिसर्च की ये सबसे पहली शर्त है। व्यापार की भी, जब व्यापारी अपने बेटे को व्यापार सिखाता है और जब वो अपने बेटे को देता है कि ये 10,000 रुपये ले ले नोट देता है और वो अपने ऐसे चुपचाप रख लेता है तो कहता नहीं बस खत्म, तू व्यापारी का बेटा नहीं है, क्यों गिन कि क्या बात करते हो, आप दे रहे हो मुझे, आप पे भरोसा नहीं है क्या, कि नहीं कोई व्यापारी में किसी पे भरोसा नहीं, मैंने बोला बाप पे भी भरोसा नहीं, मुझ पे तो भरोसा है कि मैं धोखा नहीं दूंगा, लेकिन मेरी बुद्धि पे तो नहीं है, गिनती में तो मैं भूल सकता हूं, गिन के लेना और गिन के देना वो पहले दिन का पाठ है। चोर अपने बेटे को चोरी सिखाता है तो सबसे पहले दिन का पाठ क्या पढ़ाता है कि पकड़ा जाए तो जान कितनी पिटाई हो लेकिन कबूल नहीं करना, सजा कबूल करने पर होती है, चोरी करने पर नहीं होती, चोरी करने की सजा किसी कानून में नहीं है, और कबूल कर लो तो किसी कानून से फिर तुम बच नहीं सकते, कोई वकील का बाप बचा नहीं सकता क्या। तो ऐसी ये बात है रिसर्च में कि तुम बिल्कुल अंतिम तह तक जाओ क्या, एक एक किसी पर शक नहीं है, समझे ना, सबने बढ़िया किया है, देखो इसीलिए अपने रिसर्च में पद्धति होती है कि हम किसी का कोटेशन दें तो वहां नंबर डालें फिर नीचे पेज नंबर लिखें। अब बातें तो बहुत हैं, अपन तो इतना ही कर पाते हैं कि वो कौन सा एडिशन है, कहां से छपा है, वो सब उसकी अंत में उनकी सूची लगाएं कि ये किताब फलानी जगह से छपी है वहां मिली है उसका ये पेज नंबर हमने दिया है क्या, क्योंकि वो यदि देखना चाहे सामने वाला तो वो क्या करे, तो ये किताब कहां मिलेगी ये भी आपको बताना जरूरी है। अब इस संकट से बचने के लिए मैंने एक दूसरा रास्ता चुना है, मुझे आपको वैसे पता नहीं चलेगा क्या, अपन को पेज नंबर देने ही नहीं, अपन को गाथा नंबर देना और लिख देना उसकी टीका में, और कितनी प्रतियां 10 जगह से छपी हों, पहले तो हर सिर्फ लिखित प्रति होती थी ना, तो हर लेखक अलग अलग हर एक का पेज बदल जाता था, तो जो हमने लिख दिया गाथा नंबर 73 की टीका में ये बात लिखी है, तो किसी भी कृति को पढ़ना तुम गाथा 73 की टीका देखोगे अब कितनी 5-6 लेने होंगी, कहीं ना कहीं ढूंढोगे तो मिल ही जाएगी, और पंक्ति कैसे दे सकते, नहीं तो लिखना पड़ता है इस पर इतनी पंक्ति पे, पंक्ति तक लिखनी पड़ती है, यानी हमने जहां किसी का कोटेशन दिया है तो उसकी पूरी डिटेल वहां होनी चाहिए और जिस प्रति में आपने बताई है उसमें मिलनी चाहिए। यदि वो नहीं मिलती है तो आपकी वो रिसर्च अधूरी मानी जाती है। इसके संदर्भ में मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं। पंडित टोडरमल जी के प्रभाव को मैं बताना चाहता हूं। शायद कल परसों दादा ने कुछ बोला था किसी क्लास में कि इसी वजह से उनकी मृत्यु हुई, पांचवें छठवें अध्याय की वजह से। पंडित टोडरमल जी ने पांचवें छठवें अध्याय में, खासकर सातवें में भी बहुत से अजैन ग्रंथों के उद्धरण दिए हैं और जैन धर्म की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए बहुत दिए। तो जब मैंने रिसर्च की तो उसी सिद्धांत के हिसाब से कि इनकी अपन को खोज करनी चाहिए, वे ग्रंथ देखना चाहिए। तो टोडरमल जी ने कहां से लिखा? अब उन्होंने लिखा हनुमान नाटक में लिखा है, ऐसा लिख दिया। अब हनुमान नाटक कहां से प्रकाशित हुआ, कहां उपलब्ध होगा, कैसा होगा, उसका पेज नंबर क्या है, अब तो पूरा हनुमान नाटक कहीं से खोजो और पूरा आद्योपांत पढ़ो और निकालो। अब उनके पास वो सब चीजें शायद उपलब्ध रही होंगी और ना भी रही हों, लेकिन बहुत प्रतिभाशाली थे ना। एक दफे पढ़ी उनने और फिर वो चली गई दूसरी जगह किताब, तो उन्हें याद रहती थी। तो वे स्मृति के आधार पर लिखे तो छंदों में भी थोड़ा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि स्मृति के आधार पर तो छंद ऐसे तरह से बदलते रहते हैं ना। जब हम लोग भूल जाते हैं ना तो अपनी तरफ से जोड़ जाड़ के उस छंद को बना लेते हैं और बोलते रहते हैं। बहुत से छंद ऐसे मैं बताऊंगा नीति शतक के इसके उसके, धीरे धीरे वो बदल जाते हैं। तो मैंने रिसर्च की तो अब उनके लिए क्या चाहिए था कि यहां के जो शास्त्र भंडार हैं और उनमें जो ग्रंथ हैं और उन ग्रंथों में देखा जाए। तो उन ग्रंथों को मैंने देखने की कोशिश की तो वो हर शास्त्र भंडार के पास में गया तो वो मुझे मिले नहीं। जहां वो से लिखा है ना उसमें खूब माथा मारो और वहां वो पंक्ति मिलती नहीं। बहुत संशय खड़ा हो गया। तो उस वक्त ये जो अपना घी वालों का रास्ता और हल्दियों का रास्ता है और जिसमें ये अपना बड़ा मंदिर है उसके आगे वाले का रास्ता, उस आगे वाले के रास्ते में वहां चंदालाल जी टोंगिया रहते थे। आप लोग कोई जानते होंगे, कोई पुराना आप जानते हैं ना देवखन को आदि। तो चंदालाल जी टोंगिया के बगल में एक भाई रहते थे सांवले सांवले से। तो उनने ये काम बहुत किया था। हम खोजते खोजते उनके पास पहुंचे और उनसे हमने कहा कि भाई हमको अब ये शास्त्र चाहिए और हमें भी मिलान करने को देखना है। तो उन्होंने हमको ये बताया कि इन सब लोगों ने बाद में बदल दिए। वो जो टोडरमल जी ने जिन शास्त्रों को पढ़कर इसमें उद्धरण दिए थे उन शास्त्रों में से उन अध्ययन विद्वानों ने वो निकाल दिए, वो पेज दूसरा लगा करके लगा दिया और अगली जो प्रति हुई उसमें नहीं दिया। ऐसा मतलब मेरे कहने का मतलब कितनी बुरी तरह प्रभावित थे वे लोग कि जो वे लिखते हैं कि हनुमान नाटक में लिखा है कि जो ऐसा ऐसा जैन धर्म प्राचीन है तो उन्होंने उसमें से वो छंद ही निकाल दिया। ना हम रामो नामे बांसा रागे जेसु मा मे मना, वहां से गायब है। आखिर छोड़ना पड़ा, हत्या डालना पड़ा। अपन ने वहीं से काम चलाया, कोई उद्धरण ने लिखा और जो उसमें लिखा था। टोडरमल जी ने थोड़ी ऐसे लिखे जो नीचे वो टिप्पणियां लिखी है ना, ये तो सुनने वालों ने हम लोगों ने मेहनत कर करके जहां जहां उपलब्ध हुई वहां से वो लिख दी है। वो भी कोई साधारण काम नहीं है। आजकल कोई लोग संपादन का अर्थ नहीं समझते हैं, छपाने का अर्थ नहीं समझते हैं, संपादक में अपना नाम लिखवा लेते हैं और प्रूफ रीडिंग तक नहीं करते हैं। यदि प्रूफ रीडिंग कर भी लें तो वे प्रूफ रीडर हैं वास्तव में, संपादक क्या है, संपादन किसे कहते हैं वो तो जानते ही नहीं। सबके नाम संपादकों में लिखे हुए हैं। अभी छाबड़ा जी से कहो तो अभ्याल कर तुम्हारा नाम लिखना है संपादक में, हाँ लिख दो। सब लिखाने को तैयार है क्या लेकिन संपादक किसे कहते हैं? जी अखबार आते हैं ना सब, मंगलायतन आता, मंगलायतन का अखबार आता है ना, उसमें सब कितना संपादकों के नाम लिखे हैं। और वे लोग मंगलायतन आता है उसके बाद भी उनने पढ़ा कि नहीं पढ़ा इसका ठिकाना नहीं है, आप समझिए ना, उसके बाद भी पढ़ा कि नहीं पढ़ा। हमारे यहां ऐसा काम नहीं है, हमारा तो आद्यो पांत पढ़े तो ही हम नाम लिखने देने, इधर नहीं लिखने दें। इसलिए बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं, क्या इसे बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं कि साहब हम क्या कर रहे थे, हम तो इन्हें सम्मान दे रहे थे कि इनका नाम लिख दें और जिन इनको मुफ्त में ही वो हो रहा है, साथ बड़े ज्यादा का भी नाम लिखा। समन्वय वाणी में लिखे रहते हैं बहुतों के नाम, उनको पता ही नहीं है उसने क्या छपा है क्या नहीं छपा है, क्या करें। मैंने तो पहले दिन से ऐसा निभाया है कि जब मैंने आत्म धर्म मेरे पास आया और दूसरा अंक आया तो भैंसरी की 64वीं जन्म जयंती थी, वहां से 64 फोटो भैंसरी के और उनके बोल और बहुत महिमावंत जैसी बातें पूरा भव प्रभव की उसमें लिख करके पोथन्ना आ गया और उसमें लिखा था कि इसको हू बबू बिना कुछ नींद में किए छाप दो। मैंने नहीं छापा, कुछ नहीं छापा। फिर जब मैं गया सुनकर गुरुदेव के सामने सब बात आई कि सब ऐसा ऐसा हुआ है, मैं भेज दिया, यदि आपने मेरे को दिया है तो साल भर तक मेरे को कोई टोकेगा नहीं, साल भर बाद आपको मेरे पास रखना हो तो रखना, नहीं रखना हो तो मत रखना, मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे साल भर शांति से करना देना। बोले ठीक है, आप बाकी क्या सबका गुरुदेव में तो कह दे नहीं कोई नहीं टोकेगा, कोई नहीं टोकेगा, लेकिन वो ग्रुप था ना वहां, उसने कहा ठीक है ठीक है, लेकिन हम जो भेजे उसमें कुछ मीन मेक किए बिना, आप काट पीट किए बिना आप छाप दिया करें। मैंने कहा देखो एक बात आप याद रखो, उसमें सजी भाई वगैरह सब थे, बिल्कुल सही होगा आपका तो भी मैं दो लाइनें काटूंगा और दो लाइनें जोड़ूंगा। बोलो आपको भेजना है क्या? क्यों का फिर क्यों कटे काटेंगे? क्योंकि मुझे बताना है कि संपादक के अधिकार क्या होते हैं, आपको इस बात की ट्रेनिंग देनी है मुझे, क्या आप ये लिखना भूल जाइए अब। धन कुमार जी फॉलो करवाना है, बिल्कुल सही होगा तो जिसको ये भ्रम है कि मेरा हूबहू छाप देना तो उसको समझ लेगा कि मैं दो लाइनें काटूंगा और दो लाइनें जोड़ूंगा। बोलो अब सही है कि नहीं? समझ जाने क्या है चलता है सब। गुजरात में तो मालूम संपादक कौन होता है, वो तो सेठिया जिसको कुछ काला अक्षर भैंस बराबर है उसके नाम संपादक में लिखे रहते हैं, वो देखता ही नहीं है और देखने वाले दूसरे ही हैं। देखो अभी देख लो किन किन के नाम छपे हैं, तो देखते हैं कभी। अब ये अर्थ नहीं समझते कि संपादक का क्या अर्थ होता है। तो ये मैंने देखो इसमें लिखा, फिर वो बात लिखी ना, देखो क्या लिखा, फिर नंबर पर पढ़ रहे ना 26 पे, ऐसे जब जीव का मिथ्या तो कर्म अनंतानुबंधी सहित सत्य में सूच क्षय हो जाए तब फेरी उदय आवे नहीं, तब ज्ञानी भया संता फेरी कर्म का करता नहीं। उक्त कथन में यह बात एकदम साफ हो गई है कि जिस प्रकार वृक्ष के फल से एक बार गिर जाने पर वह द्वारा वृक्ष से नहीं बनता, उसी प्रकार मिथ्या प्रभाव से के एक बार जल मूल से नष्ट हो जाने पर उसका उत्पाद द्वारा नहीं होता, इस प्रकार अप्रतिपाती ज्ञान भाव उदय को प्राप्त होता है। इसलिए मैंने कहा था छाया सम्मा दर्शन लेना है यहां मुख्य रूप से, और केवल ज्ञान में तो अप्रतिपाती बात है ही नहीं। मैंने जो मुख्य बात बतानी थी वो तो हो गई, तात्पर्य यह है कि मिथ्यात्व भाव के एक बार जलमूल से नष्ट हो जाने पर उसका उत्पाद द्वारा नहीं होता, इस प्रकार अप्रतिपाती ज्ञान भाव उदय को प्राप्त होता है। इसके बाद में एक कलश दिया है, तो अब वो कलश को पढ़ते हैं। भावो राग बोलो, पढ़ो बोलो, कोई पढ़ो अच्छा गला वाला। एक पढ़ो सब मत पढ़ो, जो अच्छा गला वाला हो पढ़ सकता हूं इस खंड को, शालिनी को, है ना? कोई नहीं है इस शालिनी छंद को ढंग से यहां आकर स्पीकर पर पढ़ सके। सब शास्त्री हो गए। भावो राग द्वेष मोह विनायो जीवस्य स्यात् ज्ञान निर्वृत्तैव रुध्यन् सर्वान् द्रव्य कर्मासयोगान् एषु भावा सर्वभावाश्रयाणाम्। अब तो पढ़ो, पढ़ सकते ना इस तरीके से? क्या शास्त्री फाइनल के सब गायब है क्या? इन द्रव्य कर्मों के पहाड़ों के निरोधक भाव जो राग द्वेष मोह बिना ज्ञान निर्वृत्त एव जीवस्य यो भावः। राग मोह द्वेष से रहित अकेले ज्ञान से बने हुए जो जीव के भाव हैं, वो सर्वान् द्रव्य कर्मासुभान रुंधन, वे सभी द्रव्य कर्मों के आसव को रोकते हुए। सभी माने मिथ्यात्रोदय में जो जो बनते हैं वे, है ना? एसो अभावा सर्व भावा सर्वानाम, और इसी का नाम सब भावा सर्वों का अभाव है। भावा सर्वाश्रवाणाम अभाव माने क्या? कि जो मिथ्यात्र के उदय से मोह राग होता है वो उसको छोड़कर बाकी का नहीं, इनका नाम ही वो ज्ञानी के भाव नहीं होते हैं, इसलिए ज्ञानी को बंध नहीं होता। अभी ये बात रही गई द्रव्य, मैंने कहा था ना उपसम भाव और क्षेपसम भाव की बात, ये बात तो इसकी हो गई। काहे की वो जब मिथ्यात्व का अभाव सर्वथा हो गया, अनंतानंदी का अभाव भी उसके साथ सर्वथा हो गया। अब जो उपसम सम्य दृष्टि है और क्षेपसम सम्य दृष्टि जीव है, उनके सत्ता में जो पड़ा हुआ कर्म है, छाया समदृष्टि के तो है ही नहीं, उसकी क्या पोजीशन है? जैसे उन्होंने उदाहरण दिया था ना गाथा में कि जिस तरह पका फल गिर के द्वारा पेड़ से नहीं लगता, तो अब ये वो बता रहे हैं कि वो सत्ता में पड़ा हुआ कर्म उसका क्या करें हम? वो तो आएगा उदय में, तो गड़बड़ करेगा। तो उन्होंने कहा देखो जब आएगा तब देखी जाएगी, अभी तो कुछ नहीं कर सकता वो। तो गाथा है कि पुडवी पिंड समाना उब निबद्धा जपत्यया तस् कम शरीर नूते बद्ध तूते दूते बद्धा तूते बद्धा सब्बे भी बद्धा तब्बे विणान। इससे कहते वो अंदर में ज्ञानी के जो पड़े हुए हैं कौन, उपसम सम्बन्धि और सेवसम सम्बन्धि वाले के, वो पृथ्वी के ढेले के समान है। जैसे रस्ते में पृथ्वी का ढेला पड़ा है ना, एक पत्थर पुडवी पिंड समाना, अगर पत्थर ही मिट्टी का ढेला समझो, पत्थर में थोड़ी ताकत होती है, पृथ्वी के मिट्टी के ढेले के समान है। कहते मिट्टी के ढेले की ऐसी कोई कीमत नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही सत्ता में पड़ा हुआ कर्म पृथ्वी के ढेले के समान है, जब तक उसका उदय काल नहीं आएगा तब तक वो तुम्हारा कुछ भी नुकसान करने वाला नहीं है, है ना? जो बंधे थे भूत में विकर्म पृथ्वी पिंड सम, वे सभी कर्म शरीर से हैं बाध्य सम ज्ञानी के। कहते जीव से बंधे ही नहीं है, ये तो जो कर्म शरीर माने जो कारमान शरीर है ना, ये तो उसके साथ बंधे हैं। यानी अपन धीरे धीरे कहां बढ़ रहे हैं ये बताना चाहते हैं कि जो जो आश्रव भाव हैं जिनसे हम बंधते हैं उनकी वास्तविक पोजीशन क्या है जिससे तुम इतने घबरा रहे हो। आश्रव 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 क्या है, आश्रव भी कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि ये जितना कितना ही हो जब तक वे उदय में नहीं आए विफल नहीं दे सकते, इसलिए तब तक कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बंधते वक्त कोई कर्म फल नहीं देता और उदय में आता है वो एक समय को आता है, तो एक समय उसका फल आता है और अगले समय वो खत्म हो जाता है उसमें फल नहीं जाता। अब क्या डरना, सिर्फ आपको वो एक समय ही तो ही बचाना है ना। क्यों क्या बाप कहते साहब वो कर्जा है तो वो मांगने आएगा। देखो कि वो छुट्टी के दिन नहीं आ सकता, ऑफिस के टाइम के अलावा नहीं आ सकता, इतने टाइम तो तुम निश्चिंत हो ना। क्यों तो वो साहब वहां से भेजेगा अपनी ड्यूटी पूरी करने आएगा, बस वो दो मिनट तुमको बताना है कि हाँ नहीं है, खत्म, बाप ही चला जाए। कहाँ है 24 घंटे तुम्हारा माथा खराब कर गए और तुम बनी है तो इस बात में तो होशियार हो ना। क्यों कितने लोगों को टरकाते हो, अकेले वो ही नहीं और उधार मांगने वाले दान मांगने वाले सबको है ना, बस खत्म। कितने तो कहना है, कह दो नहीं है नहीं है नहीं है, बस खत्म। तो आखिरकार के तुम्हें एक दफे मना कर दो ना साफ तो इंद्र खत्म हुए, अरे अपने आप परेशान होकर बंद हो जाएगा। क्या कहना, हम क्यों कहें, हम तो मीठे ही बोलते हैं ना। क्यों हम तो मीठे बोलने वाले हैं ना, हाँ हाँ सोच रहा हूँ सोच रहा हूँ, सोचूंगा देखूंगा करूंगा, करने में अपने आप थक जाएगा, नहीं थकेगा तो काल बीत जाएगा, झंडा खत्म है ना। तो वो यही बता रहे कि तुम कर्म के साथ वो क्यों नहीं करते, क्यों घबरा रहे इतना, ये कर्म है इतने ढेर सारे क्या ढेर सारे हैं। एक दफे अपना वहां का शिविर था तरानतिज में, तो साहु शांति प्रसाद जी आए थे, तो उस वक्त उन पर कोई बहुत बड़ा केस चला था और जिसमें बहुत खतरा था, जेल जा सकते हैं, फांसी की सजा हो सकती है, क्या क्या मतलब ऐसा बड़ा कोई केस बन गया था। उद्योगपति लोग होते हैं चारों तरफ कहीं से तो बिल्कुल निश्चिंत ऐसे करे कुछ नहीं। तो ऐसे पूछी हम लोगों ने, वो क्या है, कुछ नहीं, इसे तो दिन रात चलते रहते हैं तो क्या करते हैं। हमारे यहां तो एक विंग है जो यही काम देखती है, कर रखे हैं, अब ऑफिसर नियुक्त कर रखे हैं, तो ऐसे जब केस आते हैं कि जिसमें फैसला होगा तो वो सजा होगी गारंटी से बच नहीं सकते हैं, तो तारीखें लेते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं, आने देते हैं कब तक, जब तक हम मरना चाहें तब तक। अब मरते हैं तो ससुराल केस खत्म। बच्चों पे तो होते नहीं, बच्चों को सारा माल तो मिल जाता है बाप का और केस बच्चों पे नहीं होते, ऐसा बोले खुद भी स्पष्ट शब्दों में। आएंगे कर्म आएंगे उदय में, आगे फिर जाएंगे चले जाएंगे, काय की फिक्र करते हो। बोलते हो पहले गाथा का टीका पढ़ रहा हूं। पहले अज्ञान अवस्था में अज्ञान से बंधे हुए मिथ्या तुम अविरति कषाय और योग रूप द्रव्याश्रय भूत प्रत्यय हैं, वे अन्य द्रव्य स्वरूप प्रत्यय अचेतन पुद्गल परिणाम वाले होने से ज्ञानी के लिए पृथ्वी के ढेले के समान हैं। सारे कर्म बता दिए उनने, वे समस्त द्रव्य कर्म स्वभावता मात्र कारमान शरीर के साथ बंधे हुए हैं, तेरे साथ तो बंधे ही नहीं है काय को, जीव के साथ नहीं, इसलिए ज्ञानी के स्वभाव से ही द्रव्याश्रवों का अभाव सिद्ध है। द्रव्याश्रव तो तेरे को है ही नहीं है ना, और भावाश्रव का अभाव तेरे को एक मिनट की उपेक्षा करके करना है, एक इसमें कि इसके बाद कलश में ये सब बात बहुत साफ लिखी है। ज्ञानी के मिथ्यात्व है ही कहां, जिसे यहां पृथ्वी के ढेले के समान बताया जा रहा है। यह असम्यक सम्यक दृष्टि और छायक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा बात है। माने पिछली गाथा में छायक सम्यक दृष्टि की बात थी और इस गाथा में उपशम सम्यक दृष्टि और छायोपशम सम्यक दृष्टि की बात है, क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि के तो द्रव्य मिथ्यात्व की सत्ता ही नहीं है, किंतु ऑप्शन में सम्यक दृष्टि और छायक सम्यक दृष्टि के तो द्रव्य मिथ्यात्व की सत्ता रहती है ना। पृथ्वी के ढेले के समान का क्या अर्थ है? जिस प्रकार पृथ्वी का ढेला आत्मा के अहित में निमित्त भी नहीं है, उसी प्रकार सत्ता में पड़ा हुआ द्रव्य मिथ्यात्व आत्मा को मिथ्या दृष्टि बनाने में निमित्त भी नहीं है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार जहर कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, देखो बड़ा बहुत मार्मिक है, जब तक उसे खाया नहीं जाएगा खतरा नहीं होगा। शीशी में रखा हुआ जहर थोड़ी खतरनाक है ना, क्योंकि मुट्ठी में रखा हुआ जहर मुट्ठी में अपना असर दिखाने में असमर्थ होता है। उसी प्रकार द्रव्य कर्म जब तक उदय में न आए तब तक कार्यकारी नहीं होता, क्योंकि सत्ता में पड़ा हुआ द्रव्य कर्म तो पृथ्वी के पिंड के समान अकिंचित कर ही होता है, अकार्यकारी ही होता है। देखो अब इसके बाद कलश है, कलश में बहुत क्लियर कर दिया है, द्रव्याश्रव से भिन्न है, द्रव्याश्रव से तो भिन्न नहीं है, और भावाश्रव का नाश, वो तुम भावाश्रव का नाश कर दो। द्रव्याश्रव से भिन्न है भावाश्रव का नाश, सदा ज्ञानमय नराश्रव ज्ञायक भाव प्रकाश। इसलिए ज्ञायक भाव सदा ज्ञानमय है, वाश्रव भाव से सहित है ही नहीं। संस्कृत में पढ़ो, भावाश्रवाभावमयम् प्रपन्नो द्रव्याश्रवेभ्यः स्वत एव भिन्नाम्, ज्ञानी सदा ज्ञानमय के भावो निराश्रवो ज्ञायक एक एव। ये तो बहुत प्रसिद्ध छंद है, कालिदास का छंद है, एकदम फ्लो में आता, धड़ाधड़ बोलते जाओ। भावाश्रवाभावमयम् प्रपन्नो, भावाश्रव के भाव का अभाव करना है, और द्रव्याश्रवेभ्यः स्वत एव भिन्ना, द्रव्याश्रव से तो अपने आप ही भिन्न है, तो उसे जुड़ा ही हुआ नहीं है। इसलिए ज्ञानी के हमेशा एक ज्ञानमय भाव ही होता है, इसलिए ज्ञायक भाव सदा निराश्रव ही है। यानी ज्ञानी को आश्रव भाव है ही नहीं, ज्ञानी निराश्रव ही है। सरकारी ध्रुव में तो आश्रव भिन्न है ही, वो तो उससे तो भगवान आत्मा भिन्न है ही, लेकिन जो आश्रव भाव हैं उनसे ज्ञानी की परिणति भी भिन्न है, ये बात यहां पर बताई है। अब आगे एक तरह निकल ऐह